ओम शांति। वतन में बैठ बाबा, जब मधुबन की इस पवित्र धरा पर चमकते मणियों के समूह की अद्वितीय चमक देखते होंगे तो फख्र से कहते होंगे, वाह बच्चे वाह। और ये मणियां कहती होंगी, वाह बाबा वाह। ये सभी चमकदार मणियां बाबा की पावरफुल दृष्टि बनकर यज्ञ का नाम रोशन करती हैं। ऐसे पावरफुल सुयोग्य बच्चे समय अनुसार सेवा में, चाहे रामायण हो या श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या हो, सदैव अपनी ज्ञान वीणा से, सुमधुर झंकार से शीतलता प्रदान करती हैं। ऐसी ही ज्ञान वीणा धारिणी ज्ञान सूर्य की लालिमा लिए प्रातः काल की मधुर रश्मि समान आदरणीय उषा दीदी जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके जीवन की भोर जाम्बिया में हुई, परंतु आपको तो बाबा के अनमोल रतन के रूप में संवरना था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही आपने भगवान को पहचाना और सन 1976 में आपका पूरा परिवार भारत पधारा और सन 1980 में 20 वर्ष की आयु में आपने स्वयं को इस यज्ञ में समर्पित किया। तब से अब तक बाबा के हर महावाक्य को, हर बोल को जीवन में 100% धारण कर उदाहरण मूर्त बनकर दिखाया है। चाहे भारत यूनिटी यूथ मार्च हो या फिर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों में SML कोर्स कराकर दिशा बदल दी हो, आपने देश विदेश में बाबा का नाम बाला किया। इसी श्रृंखला में आपको थाईलैंड सरकार द्वारा सन 2019 का मोरल अवार्ड एवं पीस मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आप पॉलिटिकल विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम विषय है योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का स्पष्टीकरण पर आपके मधुर शब्दों द्वारा श्रवण करेंगे, आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में हम सभी बच्चों को
एक सूचना है, आज ट्रॉमा सेंटर में रक्तदान शिविर रखा है। जिनको भी रक्तदान करना है वे ट्रॉमा सेंटर में जाकर दोपहर 3 बजे तक गाड़ी SBI बैंक के पास मिलेगी, जा सकते हैं।
तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को 2 तीक्ष्ण बाण दिए हैं, जिससे हम माया को समाप्त कर सकते हैं, माया पर संपूर्ण विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और वो 2 तीक्ष्ण बाण है मन मनाभव और मध्याजी भव। प्रतिदिन की मुरली में बाबा योग के सब्जेक्ट पर कितना स्ट्रेस देते हैं कि बच्चे याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाओ, मन मना भव हो जाओ, अवस्था ऐसी हो कि जिस अवस्था को बनाते हुए हम हर पल बाबा की छत्र छाया का अनुभव करें, बाबा के स्नेह का अनुभव करे, प्यार का अनुभव करे, और हर वक्त ऐसा महसूस हो कि बस जैसे कि हम अपने संपूर्णता के करीब जा रहे हैं। परंतु उसके लिए आवश्यकता है कि हम योग की जो विभिन्न स्टेजेस है, जिसका वर्णन हम सुनते हैं मुरलियों के अंदर, चाहे अव्यक्त मुरलियों के अंदर, साकार मुरलियों के अंदर, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए अगर अनुभव भी होती है तो भी हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि पता नहीं ये कौन सी स्टेज है, या ये सही है, यथार्थ है या नहीं है, ये भी एक दुविधा में रहते हैं। और कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात ये रियलाइज कराई कि दुविधा में रहना भी देहाभिमान है। जब हम दुविधा में रहते हैं ये भी देहाभिमान है। और दूसरी बात जो कल कही थी बाबा ने कि अवस्था गिर जाना या अवस्था बन नहीं पाना, ये भी एक प्रकार की सूक्ष्म में सजा है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हर स्टेज को हम यथार्थ रीति समझें। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन सी स्टेजेस है। आरंभ करते हैं हम देही अभिमानी स्थिति से। देह अभिमान को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। देह अभिमान के बाद देही अभिमानी, उसके बाद है आत्म अभिमानी, उसके बाद है अव्यक्त स्वरूप, फिर है फरिश्ता स्वरूप, फिर है विदेही स्वरूप, फिर है क्या कहेंगे, विदेही स्वरूप के बाद कर्मातीत स्टेज, कर्मातीत के बाद अशरीरी, और अशरीरी के बाद लवलीन अवस्था। सुनते हैं तो महसूस होता है ये जैसे एक ही है, लेकिन उसमें अंतर बहुत है। तो आरंभ करते हैं हम कि सबसे पहले जो देह अभिमान है उसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और देह अभिमान जब कहते हैं बाबा, कभी कभी हाँ उसमें भी जैसे कल के डेफिनेशन में कहा कि दुविधा की स्टेज, कंफ्यूजन वाली स्टेज भी देह अभिमान है। तो इसीलिए देह अभिमान के सूक्ष्म स्वरूप को भी बाबा बताते जा रहे हैं। देह अभिमान को हम ये जानते हैं कि जहां कोई न कोई कमजोरी के वशीभूत हुए, विकारों के वशीभूत हुए, तो ये देह अभिमान की स्टेज हो जाती है। जहां वो विकार या कमजोरी का प्रवाह हमारे अंदर चलने लगे तो उसको कहेंगे देह अभिमान। हर कर्मेंद्रिय द्वारा वो ऊर्जा जैसे बहने लगती है, क्रोध आ गया, ईर्ष्या आ गई, ग्लानि कर दिया, निंदा। कल बाबा ने बहुत अच्छी बातें ये धारणा की बताई कि निंदा करना, ग्लानि करना, किसी के गुण अवगुण को देखना, विशेषकर अवगुणों को देखना, उसका वर्णन करना, ये ऐसा ही है वैसा ही है। बाबा कहे तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों अपना समय उसमें लगा रहे हो। और अभी संडे की मुरली जो बाबा की आ रही है, बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें कही है। बाबा कहे कि बच्चे तुम जब भी कोई मेगा प्रोग्राम करते हो या कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम करते हो जहां तुम्हें सफलता मिली, तो उस कार्यक्रम से समय को समीप लाते हो। बहुत अच्छी एक ही लाइन है बाबा की उसमें कि हर बड़ा प्रोग्राम करना और सफलता को अनुभव करना, यह भी समय को समीप लाना है। तो एक एक कार्यक्रम, एक एक घड़ी को समीप लाता जा रहा है तो सोचो समय कितना समीप आ गया है। तो इसीलिए कहा कि अब देह अभिमान की स्टेज से तो हमें बहुत ऊपर चले जाना चाहिए। बार बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझने का मतलब क्या है? क्या रटते जाना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, क्या ये रटना, इसको आत्म अभिमानी स्थिति कहेंगे? या ये कहे कि भाई हाँ आत्मा समझ करके हम बाबा की याद में बैठे हैं? नहीं, आत्मा अभिमानी जब हम कहते हैं तो जैसे ही हम योग में बैठे आत्मस्थिति में, वैसे ही आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा को महसूस करना, उसका स्वरूप बन जाना, उसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे देह अभिमान जब कहते हैं तो हर कमजोरी या हर विकार का स्वरूप बन जाना और वो ऊर्जा प्रवाहित होना, ठीक इसी तरह आत्म स्वरूप या आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा के उस शुद्ध नशे में स्थित हो जाना, माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन करके उस ऊर्जा को हम अपने अंदर समाते जाते हैं। आत्म अभिमानी क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं हम डायरेक्ट कर्मातीत स्थिति या लवलीन स्थिति तक पहुंच जाएं, वही स्टार्टिंग से बैठ करके उसका? नहीं, सबसे पहली बात आत्म अभिमानी इसलिए बनना होता है क्योंकि सारा दिन जब व्यक्ति कर्म व्यवहार में रहता है, बाहर आना जाना होता है, कई लोगों से मिलना करना होता है, तो कभी कभी उनकी नकारात्मक ऊर्जा को भी हम अपने अंदर ले लेते हैं या उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऑरा को डैमेज करते हैं। हर एक इंसान के चारों ओर एक ऑरा है, एक प्रभा मंडल है। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो आत्म अभिमानी बनने से हम अपना ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, अपने ऑरा की सफाई करते हैं कि उसमें जो भी नकारात्मकता अगर आ भी गई हो तो उस नकारात्मकता को हम साफ करते, क्लीन करते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो नकारात्मक प्रभाव को लेकर के आप बाबा को याद करने बैठो तो जो सहजता से देह से न्यारा होना चाहिए उसमें मेहनत बहुत लगेगी। जितना हमारा ऑरा क्लीन होगा, लाइट होगा, सातों गुणों की ऊर्जा उसमें होगी तो ये बूस्टर का काम करेगा उड़ने के लिए। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम योग में बैठे तो आत्म अभिमानी स्थिति हमारी हो, अर्थात आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बने और आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन करके उस ऊर्जा को हम अपने चारों ओर प्रवाहित होने दें। वो जैसे किरणें चारों ओर जितनी हमारी प्रवाहित होगी उतना हमारा ऑरा के अंदर अगर कोई भी नकारात्मकता होगी तो वो नकारात्मकता क्लीन होने लगेगी और हमारा स्वरूप जैसे बहुत सुंदर, वो ऊर्जा से भरपूर स्वरूप हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं कि मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जब तक आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं तब तक बाबा को अगर याद भी करेंगे, दो मिनट याद में स्थित भी होगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि पहले ऑरा क्लीन नहीं किया है। इसलिए खाली मैं आत्मा हूँ ये रटने की बात नहीं है, या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ये बात नहीं है। उसको फील करना, महसूस करना और उस ऊर्जा को अपने अंदर विकसित करना, ये है सबसे पहली अवस्था जब हम योग में बैठते हैं, आत्म समझ करके बाबा को याद करने के लिए। तो आत्म अभिमानी का अभ्यास बहुत आवश्यक है। उसके बाद जब देही अभिमानी कहते हैं, तो देही अभिमानी माना, जब हम कर्म में आते हैं तो आत्म अभिमानी बन करके जो ऊर्जा हमने अपने अंदर एकत्रित किया है, तो देही अभिमानी बन करके उस ऊर्जा को हम अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा उस कर्म में भी प्रवाहित करते हैं। और जैसे शांत चित होकर के कर्म करते हैं, खुशी से कर्म करते हैं, प्रेम से कर्म करते हैं, तो ये सातों गुणों की ऊर्जा हमारी कर्मेंद्रिय द्वारा उस कर्म में प्रवाहित होनी चाहिए। उसको कहा जाता है कि देही अभिमानी हो करके हम कर्म में आए। जब इस स्थिति में हम कर्म करेंगे तो कर्म में परफेक्शन तो आएगा ही आएगा, कर्म बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो कर्म भी आत्मा को सुकून देता है, सुख का अनुभव कराता है। वो कर्म जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सभी ने सुना दादियों के मुख से, बड़ों के मुख से, कि बाबा ने कभी कर्म संन्यास नहीं किया, कर्म को छोड़ा नहीं। चाहे बाबा धोबी घाट पर भी चला जाता था साकार बाबा, चाहे बाबा अनाथ सफाई में भी चला जाता था, बाबा बच्चों के साथ खेल भी करता था। कल की मुरली में आया कि बाबा बच्चों के साथ खेलता भी है। हर कर्म करते हुए वो ऊर्जा को प्रवाहित करते थे उस कर्म में। इसीलिए बाबा जो भी कर्म करता था उसमें एक परफेक्शन, कर्म को छोड़ा नहीं, अंत घड़ी तक बाबा ने कर्म किया, मम्मा ने कर्म किया, कोई कर्म को छोड़ा नहीं। लेकिन कर्म करने की विधि बाबा ने जरूर सिखाई अपने कर्मों के माध्यम से, कि बच्चे जब कर्म करो तो प्रेम से उस कर्म को करो, ये नहीं कि काम उतारने के लिए चलो भाई जल्दी करो काम उतार दो, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम से वो कर्म करो, यज्ञ सेवा कर रहे हैं खुशी से करो, तो उससे वो जमा होता है, कमाई होती है। तो इसीलिए देही अभिमानी होकर कर्म करना माना वो सातों गुणों की ऊर्जा को प्रवाहित करना। आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कई बार किसी को देखते हैं तो कहेंगे कितनी मृदुभाषी है ये, जैसे इनके एक एक शब्द से भी शहद टपक रहा हो, कितना मीठा उसका व्यवहार है, ये तो जैसे देवता है। ये फीलिंग आनी चाहिए लोगों को। इसको कहते हैं देही अभिमानी स्टेज, कि जहां हमारे कर्म के द्वारा लोगों को लगे कि भले ये इस दुनिया में है, कर्म बहुत एक्यूरेट परफेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे वो कर्म में भी वो प्रेम, खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, ये गुण जैसे उसकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो रही हो, जो दूसरे को भी प्रेरणा दे कि कर्म करे तो इसके जैसे करे, जहां उस कर्म के द्वारा भी हमारी कमाई हो रही है, जमा हो रहा है, हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं। तो इसलिए कहा ये देही अभिमानी है। लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन होता है, देही अभिमानी, विदेही और अशरीरी, क्या अंतर है तीनों में, क्या कहेंगे? देही अभिमानी, विदेही स्थिति और अशरीरी में क्या अंतर है? है कोई अंतर? सबसे पहली बात है या नहीं है? है। क्या अंतर होगा? तो विदेही जब बनते हैं, विदेही माना कर्म में ही, इसी समय पर कर्म करते हुए विदेही स्थिति, विदेही और अशरीरी में बहुत बड़ा अंतर है। देही अभिमानी में हम वो सातों गुणों की ऊर्जा को प्रवाहित कर, लेकिन विदेही में हम अपनी कर्मेंद्रिय को मालिक बनकर के यूज करते हैं। करण करावनहार स्टेज में स्थित होकर के मैं आत्मा करावनहार हूं, ये इंद्रियों के द्वारा मैं कर्म करा रही हूं, इसको कहते हैं विदेही। मालिक बनकर के कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना, जिस तरह से राजा जनक के लिए कहा जाता है वो अशरीरी था, ये नहीं कहा जाता है, विदेही था। राजा जनक राजा था, सारे भौतिक सुख साधनों के बीच में था, लेकिन रहते हुए अनासक्त वृत्ति, जहां वो भौतिकता उसको खींच नहीं सकती थी। भले राजा था इसलिए उसको प्राप्त था, सुख सुविधा के सारे साधन उपलब्ध थे, यूज भी करता था। मालिक बनकर के प्रयोग करना, राज कारोबार को चलाना, और राज कारोबार को चलाते हुए भी डिटैच्ड, न्यारा, उसको कहते हैं विदेही। तो देही अभिमानी अलग चीज है, विदेही माना मालिक बन करके अपनी कर्मेंद्रिय का प्रयोग करना, आसक्ति न हो जिसमें, अनासक्त वृत्ति को रखते हुए न्यारे और प्यारे हो करके कर्मेंद्रिय को यूज करना, वो कर्म में जितना हो सके परफेक्शन हो, फोकस उसका क्लियर है कि मुझे क्या करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, फोकस बहुत क्लियर है, ये कर्म मैं इन कर्मेंद्रिय द्वारा करा रहा हूं, फोकस आत्मा पर हो कि मैं आत्मा मालिक हूं। जिस तरह से आप लोगों को वो कहानी तो मालूम होगी कि भाई एक सन्यासी आकर के कहता है राजा जनक को कि भाई हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, फिर भी मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, कैसे मैं मानूं आप ये भौतिकता के बीच में रहते हुए आप इससे विदेही हो, न्यारे हो, ये भौतिक साधन होते हुए, राजमहल सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसके लगाव में नहीं है, कैसे मैं मानूं? तो वो दिया देता है, जब महल का अवलोकन करके आओ, और हवा खूब जोर से चल रही थी, लास्ट में जब वो आता है और पूछता है देख के आए महल? हाँ देख के आया। अच्छा ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दिए पर था, दिया बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं मुझे। ठीक इसी तरह मैं भी हर कार्य करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान उस आत्मरूपी बिंदु पर रहता है कि ये आत्मरूपी बिंदु पर भी कहीं पर भी वो आसक्ति का प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो न्यारा और प्यारा होकर के कर्मेंद्रिय को यूज भी करना है, साधनों को यूज करो, क्योंकि साधनों के बिना तो जीवन नहीं है। बाबा भी कहते हैं ये साधन आपके लिए ही बने हुए हैं, लेकिन साधन को यूज करते हुए भी डिटैच्ड, उसको कहा विदेही। यूज किया लेकिन उसकी गुलामी नहीं हो, उसकी गुलामी नहीं हो। जैसे मोबाइल है, यूज किया लेकिन उसकी अधीनता न हो। साधन हमारे लिए ही है, मालिक बन करके उसका प्रयोग करें। ये नहीं कि बाद में फिर हम टाइम वेस्ट करते रहे, वो विदेही नहीं है। विदेही माना डिटैच्ड होकर के मालिक बन करके कर्म करना और न्यारा हो जाना, इसको कहते हैं विदेही। अशरीरी माना जहां हम शरीर से ही न्यारे हो जाते हैं। आत्मा अभिमानी स्थिति ये अशरीरी बनने में मदद करती है, देही अभिमानी स्थिति वो विदेही बनने में मदद करती है। तो इसीलिए जितना हम ये देह से भी न्यारे, एकदम डिटैच हो जाते, जब योग में बैठते तो उस समय डिटैच्ड हो गए, उस समय कोई कर्म नहीं, तो उस समय कर्मेंद्रिय को समेट लेना, और समेटने के बाद आत्म अभिमानी होकर के जैसे ही हमने ऑरा अपना क्लीन किया कि अशरीरी होकर ये देह से भी न्यारे हो जाए। और उस समय जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे परम नाम में याद करो, बाबा की एक मुरली बीच में आई थी कि बाबा जब आप मधुबन में मुरली चला रहे हो तब हमें कहाँ याद करना चाहिए, मधुबन में करना चाहिए, ब्रह्मा बाबा के तन में करना चाहिए, या परम धाम में करना चाहिए, या सूक्ष्म वतन में करना चाहिए, कहाँ याद करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? बाबा कहते हमेशा मुझे परम धाम में ही याद करो। जब आप सच्ची दिल से अशरीरी होकर परम धाम में जाएंगे आत्म स्वरूप में, तो बाबा कहां भी होगा, बाबा को ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। आपकी याद बाबा को ऐसे खींचेगी जो उस समय ब्रह्मा बाबा में अगर मुरली भी चला रहा हो शिव बाबा, तो आपने देखा होगा बीच बीच में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि मैं खाना खाता हूं, बाबा को याद करता हूं, फिर भूल जाता हूं, तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं बीच में। तो जब शिव बाबा जाकर के आते हैं तो क्या होता है, उस समय ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना देता है कि बच्चे मैं भी ऐसा करता हूं, मुझे भी मेहनत लगती है, मैं भी सोचता हूं कि मैं बाबा की याद में पूरा समय भोजन करूं, लेकिन बीच बीच में मैं भी भूल जाता हूं, तो बाबा अपना अनुभव सुना देते। और उस समय शिव बाबा क्या होता है, एक सेकंड में ऊपर कोई बच्चे ने विशेष परमधाम में आकर के बाबा से सकाश लेना चाहा, बाबा से शक्ति लेना चाहा, सच्ची दिल से जैसे ही वो वतन परमधाम में पहुंचे कि बाबा एक सेकंड में ऊपर जा करके उस आत्मा को भी, क्योंकि परमधाम में अशरीरी अवस्था में कितनी देर टिक सकते हैं, कितनी देर, बहुत कम समय, क्योंकि उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं तो बाबा भी आ जाते हैं, जब तक नीचे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहा होता है। और फिर बाबा शक्ति भर करके उसको छत्र छाया का अनुभव कराते हुए फिर वापस आ जाते हैं उस बच्चे के भी मनो। इसलिए बाबा हमेशा कहते बाबा को जब याद करो तो परम धाम में ही याद करो, इधर उधर और कहीं नहीं। हाँ, मधुबन में याद करेंगे तो मधुबन में जब बाबा को याद करते हैं कि शिव बाबा इस समय मुरली चला रहे होंगे, ये भी एक याद है, लेकिन जो पाप कर्म को दग्ध करना है उसके लिए अशरीरी स्थिति ही चाहिए, क्योंकि जितना अशरीरी होंगे उतना बीज स्वरूप होना आसान होगा, और उस बीज से कनेक्ट होकर के अपने पाप कर्म को दग्ध कर सकेंगे, अपने विकर्म को भस्म कर सकेंगे। तो इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास, वहां संकल्प नहीं होता है मैं परम धाम में हूं, मैं बाबा के छत्र छाया, ये संकल्प भी जरूरी नहीं है, लेकिन वो विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल होता है कि जैसे बाबा से सारी शक्तियां हम अपने अंदर समेट लेते हैं। ये अशरीरी स्टेज है। तो विदेही स्टेज अशरीरी में भी अंतर है। विदेही यहां, अशरीरी जब यहां से भी हम न्यारे हो गए। अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप जब हम कहते हैं तो ये व्यक्त, व्यक्त देह से परे। तो हर एक के अंदर, जैसे बाबा कई बार कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे अंतवाहक शरीर, एक है ये स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर। जब आत्मा प्रवेश होती है या निकलती है तो सूक्ष्म शरीर से देह को त्याग करती है। जो छाया वाला स्वरूप होता है वो है अव्यक्त, जिसमें ये व्यक्त देह नहीं है लेकिन सूक्ष्म लाइट का स्वरूप है, आकृति है सूक्ष्म लाइट की। इसीलिए बाबा कहते जब आप सूक्ष्म वतन में आओ तो इस अव्यक्त स्वरूप से आप ये देह से न्यारे होकर के अपने अव्यक्त स्वरूप में अंतवाहक शरीर में स्थित होकर के वतन में आओ, सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म वतन में तो अव्यक्त और फरिश्ता स्वरूप में क्या अंतर है कि हर एक का सूक्ष्म वतन में संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हमने सुना कि जब पहली बार गुलजार दादी भी जब ऊपर गई और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मा को देखा, बहुत लाइट लाइट वाला, और आकर के नीचे बाबा को सुनाया कि बाबा मैं जब ऊपर गई तो ऊपर आप ही थे, आपके जैसा ही बाबा था लेकिन बहुत लाइट लाइट वाला था, बहुत चमकीला स्वरूप था, बहुत सुंदर आकर्षण वाला स्वरूप था। तो वो कौन है और आप और उसका क्या कनेक्शन है? तो बाबा ने कहा आप उसी को पूछते थे कि आप कौन हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी ये बात क्लियर नहीं थी। तो फिर जाकर के जब पूछा उसको कि आप कौन हो तो कहा मैं उसी का ही संपूर्ण स्वरूप हूं। तो कई बार जैसे गुलजार दादी जाती थी और बाबा सभा दिखाते थे ऊपर में, तो एक बार दादी से हमने पूछा कि दादी फिर जब बाबा ने आपको सभा दिखाई तो उसमें हम दिखाई दिए? ऐसे ही जस्ट दादी से पूछा तो दादी कहती है, दादी ने कहा था पहचान में नहीं आता है, क्योंकि बाबा जो ऊपर हमें सभा दिखाता है हर एक का संपूर्ण स्वरूप की सभा दिखाता है। तो इसका मतलब हम सबका संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में है, और जिस तरह बाबा ने अभ्यास किया ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाए, समा जाए। तो पुरुषार्थ हमें यही करना है कि हमारा भी ये पुरुषार्थी स्वरूप जाकर के उस संपूर्ण स्वरूप में समा जाए। तो हम सबका भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ऊपर है। तो अव्यक्त स्वरूप द्वारा हम वतन में जाते हैं, अंतवाहक स्टेज द्वारा, अंतर्वाहन बन जाता है वो अव्यक्त स्टेज, और अंतर्वाहन के द्वारा वहां जाते हैं और वहां हम अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करते हैं, फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश करते हैं। वो स्वरूप बहुत लाइट लाइट वाला होता है, चारों ओर जैसे एक लाइट का प्रभा मंडल होता है, और उस स्वरूप से हम संपूर्ण बाप दादा को मिलते हैं, मिलन मनाते हैं। जो बाबा से आपको बातें करनी है, रूरिहान करनी है, कोई बात आपको परेशान कर रही हो मानो और आप बाबा को सुनाना चाहते हैं तो कैसे सुनाएंगे? या आप अच्छी अच्छी बाबा से बातें करना चाहते हो, जो कई बार साकार मुरली में बाबा सुनाते हैं, बाबा आपने तो कमाल ही कर दिया, है ना? सिखाते हैं बाबा कैसे बात करना होता है। तो इसी तरह हम जब वतन में जाते हैं, अपने फरिश्ते स्वरूप में, उस चमकीले ड्रेस में, उस संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करते हैं, उस ड्रेस को धारण करते हैं और फिर संपूर्ण बाप दादा के सामने जाते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखते हैं, आवाहन करते हैं बाबा का, और फिर आपको जो कहना है, संकल्पों की भाषा चलती है वहां पर, तो संकल्पों की भाषा से आप बाबा से कम्युनिकेट करो। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो कभी कभी कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बाबा के प्यार को अनुभव करो, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर रखाओ, वो अनुभव करो, जो अनुभव करना चाहते हो वो अनुभव बाप दादा आपको साकार में जो पालना नहीं मिली है वो अव्यक्त में इस पालना का अनुभव कराएंगे। जो पालना आप चाहते हो बाबा से, उस पालना का अनुभव फरिश्ते स्वरूप द्वारा आप कर सकते हो। बाबा के साथ आप बातें कर सकते हैं, बाबा के सामने बैठ करके बाबा से दृष्टि ले सकते हैं, बाबा की पावरफुल सकाश का अनुभव कर सकते हैं। ये फरिश्ता स्टेज द्वारा होता है कि फरिश्ता स्टेज द्वारा हम बाबा से रूरिहान करते हुए धीरे 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 बाबा के स्नेह में समा जाए, बाबा से दृष्टि लेते हुए जैसे खो जाए और बाबा के प्यार को अनुभव करे, जिसको कहा लवलीन अवस्था, लवलीन स्टेज। बहुत सुंदर बात एक याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति गुरु नानक देव के सामने जाते हैं और पूछते हैं कि मान लो कि मेरे पास में एक लोटा है, लोटे में छेद है और उसमें मैं पानी भरना चाहता हूं तो कैसे भर सकता हूं? तो उस समय गुरु नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उस पानी में लोटे को समा लो, वो उसमें रख दो, उसको बाहर ही नहीं निकालो तो भर जाएगा और निकलेगा भी नहीं पानी। हमारे में भी कई कमजोरी के छेद है, हमारे में भी कई कमजोरी के छेद है जो बाबा के उस प्यार में हमको समाने नहीं देते हैं, लेकिन उस छेद वाला लोटा क्या करो, डुबो दो, उसके अंदर खो जाए, समा जाए, उस प्यार में इस तरह से लवलीन हो जाए, उसमें से बाहर ही नहीं निकलो तो लोटा भर जाएगा ना। बाहर निकलेगा तब तो वो छेद से निकल जाएगा, लेकिन आत्मा को जब उसमें समा देते हैं बाबा के नैनों से, वो प्यार की दृष्टि लेते हुए जो गीत बजता है कि आज भी बाबा के प्यार को हम अनुभव करते हैं, वो दृष्टि के द्वारा पालना का अनुभव करते हैं, तो वो तभी होगा जब फरिश्ते स्वरूप में हम बाबा के प्यार में खो जाए, समा जाए और समाते हुए अपने अंदर बाबा की शक्ति को भी जैसे महसूस करते हैं। जब कहते हैं सकाश, बाबा की सकाश का अनुभव करो, तो एक बार हमने दादी से पूछा कि दादी, गुलजार दादी से पूछा था कि दादी जब कई बार बाबा कहते लाइट माइट की स्थिति और सकाश, या रेडिएशन और सकाश में क्या अंतर है, तो उस समय दादी ने कहा लाइट माइट में दो चीज होती, एक लाइट ज्ञान की लाइट और शक्तियों की माइट, ये जैसे प्राप्त होती है, लेकिन सकाश माना जैसे वो इंद्रधनुष होता है सातों रंग वाला, तो इसमें सातों बातें समाई होती है सकाश में। कौन सी सातों बातें समाय? सर्व वरदान उसमें समाये होते हैं, सर्व खजाने उसमें समाये होते हैं, सर्व शक्तियां उसमें समाई होती है, सर्व गुण उसमें समाये होते हैं, बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख का रस उसमें समाया होता है, फिर सर्व प्राप्तियां उसमें समाई होती है और सर्व समर्थी उसमें समाई होती है। जो बाबा कई बार कहते हैं, बाबा सर्व समर्थियों का विल कर देते हैं। तो ये सात बातें जैसे भरपूर हमें प्राप्त हो रही है, ये सकाश बाबा की है। ये अंतर है ज्ञान और योग की लाइट माइट, और दूसरा है सकाश। तो फरिश्ते स्वरूप से हम बाबा की सकाश को हम अपने अंदर भरे, तो सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देख करके बाबा की उस पालना को अनुभव करो, लवलीन हो जाओ, खो जाओ, समा जाओ बाबा से। जैसे ये सकाश प्राप्त करते हुए जैसे मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं, अंदर से सशक्त हो रही हूं, ये महसूस करते जाओ। तो देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, विदेही स्वरूप, अशरीरी स्वरूप, अब कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत स्टेज किसको कहा जाता है? कर्मातीत स्टेज का मतलब यह नहीं कर्म से अतीत। कर्म से अतीत कोई नहीं हो सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, अंत तक कर्म करना ही है। इसीलिए बाबा ने 2-3 दिन पहले भी ये बात बताई थी मुरली में, कर्म सन्यासी कोई नहीं बन सकता है, आवश्यक कर्म भी तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो है शरीर निर्वाहार्थ भी कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्मातीत बनना, घर जाना है तो कर्मातीत बनना ही है, अर्थात कर्म के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखना। हमारी इंद्रियों का कनेक्शन कर्म से है, तो बाबा ने जब एक मुरली के अंदर कर्मातीत स्टेज को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था कि पहला संबंध हमारा है इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, जैसे कहा विदेही जब है तो कर्म करते हैं, लेकिन इंद्रियों के अधीनता से मुक्त हो जाना तब कर्मातीत सहजता से बन सकते हैं। इंद्रियों की गुलामी से अपने आप को मुक्त कर देना, जो कई बार बाबा आजकल जो भी अव्यक्त मुरली चलती है बाबा की हर संडे की, उसमें ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि कई बार बच्चे कहते हैं करना तो नहीं चाहता था हो गया, बोलना तो नहीं चाहता था निकल गया, सुनना तो नहीं चाहता था सुन लिया, फिर उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। सुनना नहीं चाहता था सुन लिया, परचिंतन की बातें या किसकी निंदा ग्लानी की बातें सुन लिया, उसका प्रभाव फिर अपने चिंतन पर पड़ता है। तो कर्मातीत माना उससे भी अतीत, उस प्रभाव से अपने आप को अतीत कर देना, न्यारा कर देना। अतीत माना न्यारा। तो कर्मातीत बनने के लिए जो गीता के अंदर भगवान ने कहा है, निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी हर बात से परे, ये दुनिया है, दुनिया में ये सब चीजें चलती रहेगी, कोई निंदा करेगा, कोई ग्लानी करेगा, कोई मान देगा, कोई अपमान देगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, लेकिन उससे अतीत, उसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर देना। कर्म तो करना ही है, लेकिन जब उसके प्रभाव से मुक्त हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया, वैसे पहले बड़ा जोश आ जाता था, गुस्सा आ जाता था, लेकिन जैसे जैसे आप कर्मातीत स्थिति के नजदीक जाएंगे, जैसे बड़ी दादी के मुख से हमेशा ये बात निकलती, अब कर्मातीत होना है, अब कर्मातीत होना है, तो ये सब चीजों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करना। पहले बड़ा गुस्सा आ जाता था, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, एकदम जोश आ गया, करके दिखा देंगे उसको। नहीं, बाबा कहते हैं ठीक है, उसने कह दिया, उसकी समझ है, तो उसके प्रति रहम की भावना जागृत होना, न कि जोश में आकर के बस मैं करके ही दिखा दूं या गुस्से में आ जाऊं, क्या समझता है अपने आप को। नहीं, कर्मातीत माना, उसके प्रति रहम का भाव कि शायद उसने बाबा की बातों को समझा ही नहीं है, पहले गुस्सा आता था, अब रहम का भाव आता है, उसको मदद करने की भावना जागृत होती है कि उसको शुभ भावना, शुभ कामना का दान दे हम, ये भावना जागृत होती है, चाहे वो दुनियावी व्यक्ति हो या ब्राह्मण परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति मदद करने की शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस देते हुए उसको मदद करने का भाव जागृत होना, ये है कर्मातीत स्टेज के नजदीक जाने की निशानी। कि जहां इंद्रियों की अधीनता नहीं आती है, गुस्से में आकर के जैसे इंद्रियों के अधीन नहीं होते, लेकिन और ही उसके प्रति सूक्ष्म में रहम की भावना, मदद करने की भावना जागृत होती है, ये कर्मातीत स्टेज के समीप जाने की निशानी है। तो पहला संबंध हमारा इंद्रियों के साथ है, दूसरा संबंध हमारा देहधारियों के साथ है, देहधारियों की बातों को फील कर लेना, किसी ने कुछ कह दिया या हमने कुछ कह दिया, फिर बाद में कहना अरे तो मैं मजाक में बोल रहा था, मेरा तो इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो नेचुरल है जिसको मजाक में कहा उसके अंदर, वो तो कर्मातीत नहीं बना है, उसके अंदर जो दुख की फीलिंग आई, तो वो मेरे लिए दुआओं का काम करेगी या बद्दुआ का काम करेगी? बद्दुआ का काम करेगी तो वो मुझे कर्मातीत स्टेज से नीचे ले आती है, कर्मातीत बनने नहीं देती। लेकिन कर्मातीत जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं, वहां ये देहधारियों के साथ भी हम अर्थपूर्ण बात करें, अर्थपूर्ण हर एक शब्द के अंदर कुछ न कुछ उसको प्राप्ति कराने का भाव हो, ऐसी हमारी बातचीत हो। मजाक करे तो भी, ये नहीं कि कर्मातीत बनने वाले मजाक नहीं कर सकते हैं या एकदम सीरियस हो जाते हैं, उसको कर्मातीत नहीं कहते हैं, लेकिन कर्मातीत माना अगर हम हंसी की बात भी करते हैं, ना उसकी स्टेज को नुकसान पहुंचाते, ना अपनी स्टेज को नुकसान पहुंचाते, ना सुनने वाले को, इतना हेल्दी जिसको कहा जाए, हेल्दी किस्म का अर्थपूर्ण प्राप्ति कराने के भाव से, उसमें भी वो आत्मा कुछ प्राप्त कर ले, रियलाइजेशन कर ले, और जैसे आपको थैंक्स दे दे, दुआएं दे दे, ये है। तो देहधारियों के साथ जब संबंध में आते हैं तो उस समय भी उसको प्राप्ति का अनुभव कराना। साधन सुविधाएं हैं, लेकिन साधन सुविधाएं होते हुए भी उसकी अधीनता नहीं, यूज किया, डिटैच हो गए, न्यारे हो गए, और सहजता से हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि वो चीज हमें बार बार हमारी स्टेज को व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने के निमित्त बन जाए, वो साधन हमारे अंदर व्यर्थ क्रिएट करने के लिए निमित्त बन जाए, ऐसा ना हो। और मुख्य बात जो है, ये तीन चीजें तो है ही कि इंद्रियों का संबंध, देहधारियों का संबंध, साधनों का संबंध, लेकिन चौथा जो कर्मातीत बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कर्म भोग। कर्म भोग को भी चुक तो करना ही है, वो तो आएंगे ही, क्योंकि पास्ट में किए हुए जो कर्म है हमें पता नहीं है कि कौन से कर्म हमारे हुए हैं, और इसीलिए वो कर्म भोगना का अनुभव तो जरूर कराने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जो कर्मातीत होता है वो उस भोगना से भी अपने आप को डिटैच कर लेता है। जिस तरह ब्रह्मा बाबा को जब लास्ट में पूछा गया, जब बाबा वतन में चले गए, दादी भोग लेकर के जब गई, तो आठवां नौवां संदेश जो था जिसमें दादी ने बाबा से जाकर पूछा कि बच्चे सभी जानना चाहते हैं कि अंतिम समय आपकी स्टेज कैसी थी, आपकी अवस्था कैसी थी, तो उस समय बाबा ने यही उत्तर दिया, कर्म योग की कर्म भोग के साथ लड़ाई चल रही थी और धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। भावार्थ ये कि कर्म भोग तो आएगा, दर्द पहुंचाने का काम करेगा, लेकिन उसके हाथ पैर ढीले हो जाए, इतने हमारे अंदर कर्म योग की शक्ति जमा हो, इतने हमारे कर्म श्रेष्ठ किए हुए हो, जितना श्रेष्ठ कर्म हमने किसी को सुख देने का काम किया हुआ हो, तो वो अंदर में जमा होगा और जो जमा होगा वो उस कर्म भोगना को भोगना का अनुभव कराने नहीं देगा। वो आएगा निमित्त मात्र। जैसे हमारी दादी जब हॉस्पिटल में थी, जब ऑपरेशन होना था, कैंसर जब दादी को डिटेक्ट हुआ था, तब तो उस समय बाबा ने ये कहा था कि हॉस्पिटल नहीं, होली स्थल है, अनेक आत्माओं की सेवा के लिए, डॉक्टर्स की सेवा के लिए दादी को ये निमित्त मात्र भोगना आई है, लेकिन वो भोगना दादी को दर्द महसूस नहीं करा सकती थी। बड़ी दादी जी को जब लोग देखते थे, क्या भोगना, बड़ी दादियों को ये इतना तपस्या किया फिर भी उनको भोगना भोगनी पड़ती है, इतना कर्म भोग आता है, नहीं, कर्मातीत बनने का ये एक स्टेप जैसे ही पार करेगा व्यक्ति कर्मातीत हो जाता है। इसीलिए ये भोगना निमित्त मात्र आती है, हर एक को देनी ही पड़ती है, और इसीलिए जब ये भोगना आती है तो जितना उससे न्यारा हो जाते हैं, निमित्त मात्र वो जैसे शरीर के साथ हिसाब किताब को चुकतु करते, हम डिटैच हो गए, बाबा की गोद में हैं हम, तो वो दर्द हमें महसूस नहीं कराता है। जैसे बड़ी दादी जी को जब हमने देखा था लास्ट, थोड़े एक आध महीने पहले, तो उस समय एक दिन सुबह सुबह में मुन्नी बहन दादी के पास आई और दादी से कहा, दादी आप कैसे हो, दर्द तो नहीं हो रहा है, पूछने के लिए। जैसे दादी के पास आए तो दादी ने आंखें खोली और कहा, मुन्नी तेरे से बहुत अच्छी हो। आप सोचो कि ये व्यक्ति कब ये उच्चारण कर सकता है, जब वो भोगना उसको भोगना का अनुभव, दर्द की महसूसता नहीं करा सकता, तब कहा वो कर्मातीत हो गए हैं, तब कहा वो कर्मातीत है, वो निमित्त मात्र जैसे शरीर उसका लास्ट का हिसाब भोग रहा है, लेकिन आत्मा उससे इतनी परे सुख की स्थिति में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है, जैसे बाबा के गोद में अनुभव कर रही है। चंद्रमणि दादी का अनुभव आप लोग ने सुना होगा, लास्ट में सुना देती हूँ कि चंद्रमणि दादी ने जब उनको दर्द हुआ तो दादी को लगा जैसे गैस हो गई है, गैस हो गई है, विक्स लगाओ, है ना, हार्ट में दर्द था दादी को, विक्स लगा रहे थे, और दादी सहजता से देह से न्यारी होकर के आत्मा पंछी उड़ गया। जब उड़ गया तो वतन में जब दादी गई तो बाबा को देखा तो बाबा को कहने लगी चंद्रमणि दादी, ये दादी बाबा आज मुझे पता चला कि ये गुलजार या ये संदेशियां जब आती है तो कैसा अनुभव करती है। आज थैंक्स आपको देती हूँ कि आपने मेरे को ये ट्रांस का अनुभव तो कराया। तो बाबा मुस्कुराने लगे, बच्चे ये ट्रांस का अनुभव नहीं है, तुम शरीर छोड़ के आई है। माना उस आत्मा को ये भी नहीं पता चला कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। कर्मातीत स्टेज कि वो दर्द थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ, विक्स लगाए और आत्मा सहजता से अलग हो गई और ऊपर जाकर इतनी खुश होती है और कहती है आज मुझे ये संदेशी वाला पार्ट बाबा आपने अनुभव कराया, बहुत समय से मेरी इच्छा तो थी। तो बाबा जब उसको कहे कि अच्छा बच्ची ये ट्रांस वाला पार्ट नहीं है, ये तुम शरीर छोड़ के देखो तेरा शरीर नीचे क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो दादी ऊपर कहती है आ बाबा मैं शरीर छोड़ के आ गई, मैं शरीर छोड़ कर, माना उस आत्मा को ये फीलिंग तक नहीं, इतनी सहजता से डिटैच हो जाना। कर्मातीत उसी का नाम है कि वो भोगना, उसको भोगना का अनुभव न कराएं। इतनी न्यारी और प्यारी, दर्द जैसे महसूस कराने का प्रयत्न नहीं। तो लोगों को जब हार्ट अटैक आता है कितना पसीना पसीना हो जाता है, कितना दर्द होता है, कितना बेचैन होते हैं, लेकिन दादी को हार्ट अटैक आया और उसको पता भी नहीं चला कि ये हार्ट अटैक। वो कहते विक्स रब करो थोड़ा, और आत्मा सहजता से चली भी गई, वो दर्द ही नहीं। और वो सोचती है कि मैं तो ट्रांस में आई हूँ। जब बाबा ने दिखाया ऊपर से, देख तेरे शरीर को तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अच्छा मैं शरीर छोड़ करके आ गई। तो इसीलिए हमारी दादियों ने जो निमित्त मात्र भोगना भोगी, लेकिन वो भी जरूरी है ताकि सामान्य व्यक्ति जब भोगना का अनुभव करता है तो उसको वो भोगना बहुत बड़ी न लगे। अरे हमारी दादियों ने भी इस स्टेज को क्रॉस किया है, लेकिन उन्होंने कैसे क्रॉस किया वो प्रेरणा हमें दे रही है। और इस तरह से हमें कर्मातीत होकर के उस परमधाम वाली स्टेज में बीज स्वरूप में स्थित हो जाना है। बीज स्वरूप वो स्टेज है कि जिसमें हम भरपूरता की एक अवस्था में हैं, इतनी भरपूर कि हमारी आत्मा इतनी अंदर से शुद्ध हो रही है, इतनी शक्तिशाली स्टेज है जहां विकर्म विनाश होते हैं, पाप कर्म दग्ध होते हैं और आत्मा एकदम अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाती है। वैसे तो एक एक क्लास हो जाता है एक एक स्थिति के ऊपर, लेकिन आज उसको एक ही घंटे में समाने का प्रयत्न किया। फिर कभी अगर समय मिला तो और उसको डिटेल से समझेंगे। ओम शांति। Bye.